ओम शांति।
अभी हम एक दूसरा विषय लेंगे, टॉपिक है फिर एक बार। अंग्रेजी के एक लेखक ने अपनी एक किताब में आरसी श्राउल, उसने एक अपनी किताब में डाउट एंड एश्योरेंस एक चर्च के एक पादरी का वर्णन किया है। चर्च में एक प्रीस्ट है, समर्पित है, वहीं रहता है और बहुत प्रेम है परमात्मा के प्रति, हृदय में बहुत प्रेम है, गीत लिखता है, कविताएं लिखता है, भजन लिखता है, प्रवचन करता है, आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की युक्ति करता है, शुभ भावना से भरा हुआ मन है, ऐसा एक व्यक्ति रॉबर्ट नाम का, रॉबर्ट रॉबिन्सन, उसका वर्णन किया है कि कई समय तक चर्च में रहता है और सेवाएं करता है, परंतु एक दिन ऐसा होता है कि उसका मन उबने लगता है वही सारी चीजों से और वो सोचता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। कब तक वही करता रहूं। धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कम करने लगता है, धीरे धीरे गीत लिखना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो प्रवचन करना बंद हो जाता है, धीरे धीरे रोज जो चर्च में जाया करता था वो भी बंद हो जाता है और धीरे धीरे फिर लगता है थोड़ा संसार भी देख लूं, फिर चर्च से बाहर निकलकर संसार में जाता है और फिर डाउनफॉल, गिरते ही जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पाप कर्म करना चालू कर देता है। ऐसी उसकी जीवन कहानी। और जब वो इस तरह से पूरी तरह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, एक रात पेरिस शहर में वो पादरी एक बग्गी में बैठकर कहीं जाते रहता है। उसके साथ एक महिला आती है, बीच से वो बैठती है और वो जाने लगते हैं। वो जो महिला होती है कोई लेखक होती है जिसे पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो उसके हाथ में एक किताब होती है और वो एक भजन होता है, एक कविता पढ़ रही होती है, अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। तो पढ़ते पढ़ते वो बाजू में जो व्यक्ति बैठा है, जो पादरी था पहले, एक्स प्रीस्ट, उसको कहती है, ये वाक्य जो है इसका मुझे अर्थ आप समझाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो व्यक्ति जैसे ही वो कविता देखता है, वो भजन देखता है, उसको लगता है ये तो मेरा ही लिखा हुआ है और कैसी प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति है इसमें। तो वो उसको कहता है ये तो मेरा ही लिखा है, परंतु अब मैं भगवान से बहुत दूर जा चुका हूं, अब मेरा वो जो जीवन था जब मैं प्रभु के बहुत समीप रहता था, उसकी महिमा गाता था, वो कहां छूट गया मुझे ही पता नहीं। तो वो महिला कहती है ऐसा नहीं है, आपने खुद लिखा है, देखो पढ़ो इसकी थर्ड लाइन क्या लिखा है, द स्ट्रीम्स ऑफ thy अनसीजिंग mercy, तुमने ही लिखा है परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा का जो झरना है वो तो निरंतर अनवरत बहता रहता है, आप ही ने तो लिखा है। फिर यदि आपने ही ऐसा लिखा है तो वो झरना आज भी बह रहा है, प्रभु की कृपा का झरना आज भी बह रहा है, आज इसी पेरिस की इन सड़कों पर, इन दिस वेरी स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस इज फ्लोइंग द स्ट्रीम्स ऑफ अनसीजिंग मर्सी ऑफ गॉड, ये तुम्हारे ही लिखे हुए। और जैसे ही वो सुनता है उस महिला की वो बात कि परमात्मा कृपा के झरने अब भी बह रहे, तुरंत एक नई जागृति आती है, एंड ही इज रिकमिटेड टू क्राइस्ट अगेन, और तुरंत उसका जो संबंध था अध्यात्म से, परमात्मा से, उस पवित्र जीवन से तुरंत जुड़ जाता है, फिर से एक जागृति आ जाती है। एक जागृति की आवश्यकता है, एक जागरण की आवश्यकता है, एक ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसा कोई झोंका आ जाए प्रभु प्रेम का, और जो हमें फिर से जगा दे, हमारे अंदर फिर से वो बुझी हुई प्रभु प्रेम की चेतना, प्रभु प्रेम की लगन प्रज्वलित कर दे। वो मौका अब है। एक बार फिर वो समय आया है। किस लिए ये समय आया है? फिर से जागृत होने के लिए एक बार फिर समय आया है। किस से किस लिए? जो भी पाप हुए हैं, विकर्म हुए हैं ब्राह्मण बनने के बाद, उसका अब पश्चाताप करके फुल स्टॉप लगाना है। अज्ञान में एक का एक गुना, ज्ञान में एक का 100 गुना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितने पाप कर्म विकर्म तुमने ब्राह्मण बनने के बाद किए हैं, उसको भस्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना वो द्वापर से अब तक जो किए उसके लिए नहीं लगता, क्योंकि तब एक का एक गुना था। अब पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज अनट्रू, व्हाट इज सेंस, व्हाट इज एसेंस, अभी सब पता है। और सब पता रहने के बाद भी बीच बीच में नींद के झोंके, बीच बीच में निद्रा, गफलत, आलस, अलवेलापन, श्रीमत का उल्लंघन, परमत परदर्शन, परचिंतन से होने वाले पाप विकर्म बहुत बड़े हैं। इसलिए एक अवसर फिर आया है। आज का दिवस है, फिर से संकल्प करना है कि संपूर्ण पवित्रता को अपनाया है, अब नहीं भटकेंगे, संपूर्ण जागरण का समय है, अब नहीं सोएंगे। फिर से नियति ने एक अवसर दिया है, भाग्य ने एक अवसर दिया है संभालने का। यदि अब ना संभले तो गिरते ही जाएंगे। आत्मा की स्थिति उस बॉल की तरह है जो सीढ़ी पर फेंका गया है, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे कैसे ऊपर आएगा? डबल फोर्स चाहिए। और जब ऐसा संगठन एकत्र होता है, उस संगठन में बल होता है, और संगठन के बीच में केवल सुनना नहीं है, यहां पर सुनते सुनते मन में शक्तिशाली संकल्प करने हैं, मन में मौन प्रतिज्ञाएं कर लेनी है, ये समझकर कि स्वयं भगवान है उसके सम्मुख ये प्रतिज्ञाएं की जा रही है, वो बल भरेगा, शक्ति देगा। इसलिए यहां पर केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते जो बीच का अंतराल है, वाक्य वाक्य के बीच जो मौन है, उसमें स्वयं से बात भी कर लेनी है, मन ही मन कुछ संकल्प कर लेने हैं। अब इसको और नहीं चलने देंगे। इन बातों के लिए बाबा ने मना किया है। ये जो समय जा रहा है, ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये जो संकल्प वेस्ट हो रहे हैं, बोल कर्म वेस्ट हो रहे हैं, संबंध संपर्क वेस्ट हो रहा है, इस लीकेज को रोक देंगे तो फिर से एक अवसर आया है। फिर से भगवान ने एक चांस दिया है, फिर से ड्रामा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई है। इस फिर से में हम कुछ बातें देखेंगे, ऐसी 10 बातें जो फिर से हमें आज से पक्की कर लेनी है। ये सारी बातें दिनचर्या की बातें हैं। सबसे पहली पॉइंट, फिर से नया सवेरा एक नया अमृत वेला लेकर आया है, इसलिए इस नए सवेरे में, इस नए अमृत वेले में हम सोएंगे नहीं। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर लेनी है कि आज के बाद जब तक ये शरीर है तब तक एक दिन भी, एक अमृत वेला भी ऐसा न जाएगा जिससे हमारा प्रभु से मिलन ना हो। और अमृत वेला केवल उठना नहीं, परंतु वो उठते ही श्रेष्ठ स्वमान, वो उठते ही शक्तिशाली स्थिति, वो उठते ही परमात्मा मिलन का अनुभव हो जाए। ऐसा नहीं उठ तो गए परंतु कोई अनुभव नहीं, उठ तो गए परंतु अमृत वेला साधारण, उठ तो गए परंतु नींद, उठ तो गए परंतु बुद्धि भटक रही है, उठ तो गए परंतु कोई अनुभव नहीं। संपूर्ण दिनचर्या का आधार अमृत वेला है। अमृत वेला ठीक तो सब ठीक। अव्यक्त वाक्य है बाबा के, अमृत वेला गाड़ी को पटरी पर डाल दो, सारे दिन भर अपने आप जाएगी। कब तक समझाते रहोगे ये करना है वो नहीं करना? सुबह सुबह डाल दो, आप ही समझ में आएगा सारे दिन भर का क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, कहां इन्वॉल्व होना है कहां नहीं इन्वॉल्व होना है, जजमेंट आएगा। फिर से नई सुबह आई है, फिर से नई सुबह की नई किरण आई है, फिर से नया प्रभात आया है, फिर से नई भोर, फिर से भगवान उस अमृत वेला हमसे मिलने आया है। और हम क्या कर रहे हैं? बड़े शहरों में कहीं कहीं पर सुबह सुबह पानी आता है केवल 4 से 5, और जो गृहिणी जो माता सुबह पानी नहीं भरती है उसको सारे दिन भर पानी मांगते फिरना पड़ता है। जो यहां अमृत वेले नहीं उठते और यहां अपने आप को नहीं भरते शक्तियों से, प्रेम से, खुशी से, उसको भी सारे दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, सुख दे दो, शांति दे दो, पवित्रता दे दो, सहयोग दे दो, प्यार दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, लव दे दो, प्रेज दे दो, एक्नॉलेजमेंट दे दो, रिकॉग्निशन दे दो, थोड़ी सी स्तुति, थोड़ी सी प्रशंसा, शक्ति दे दो, हमारे लिए योग करना, हम नहीं कर सकते तुम हमारे लिए योग करना, हमको सकाश देना। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्यों हम स्वयं को शक्तिशाली नहीं बनाते थे? और शक्तिशाली बनाने का समय कौन सा है? अमृत वेला। उसकी तैयारी रात से चालू करनी पड़ेगी। यदि रात में मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इसमें लगे हुए हैं तो अमृत वेला नहीं उठ पाएंगे। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, एक तो ये या वो, या तो इंद्रिय सुख मिलेगा या अतिंद्रिय सुख मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। या तो राम या तो काम, या तो भोग या संयम। सोने की विधि क्या है? बात करते करते सो रहे, टीवी देखते देखते सो रहे, किताबें व्यर्थ की पढ़ते पढ़ते सो रहे, या अव्यक्त वाणियों का अध्ययन कर रहे, या ज्ञान का चिंतन कर रहे, या ज्ञान की चर्चा कर रहे, या बाबा से योग युक्त होकर विश्राम की अवस्था में जाकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर लेट रहे। विधि क्या है? पिछले एक मास से जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, सभी सामने देखते रहेंगे, आजू बाजू नहीं देखना, नहीं तो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। ये धर्मराज का दरबार है, इंद्र सभा है। पिछले एक मास से जिसका एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, सभी सामने देखते रहे ना, वो हाथ खड़ा करे कम है। पिछले 15 दिन में एक बार भी जिसका अमृत वेला मिस नहीं हुआ, अभी जिन्होंने किया था वो नहीं, पिछले 7 दिन में, आज सुबह जिसका अमृत वेला मिस हुआ, आज पता था भट्टी का दिन है, वो मन ही मन हाथ खड़ा कर देना। क्यों नियम नहीं बन पा रहा है अब तक? एक ही तो नियम है, पावरफुल, सबसे पावरफुल दिनचर्या का और सबसे जरूरी, उसके लिए भी क्यों अलार्म वॉच चाहिए? और वो बजती है तो हाथ निकलता है हृदय से और बंद। प्रभु प्रेम का अलार्म भर दो तो अमृत वेला जगाएगा, कभी स्लोगन था क्या? हमने कभी अपने आप को संकल्प दिया है कि कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे उठकर मैं भगवान से मिलन मनाऊंगा? या आए थके हुए थे और लेट गए, पता ही नहीं चला, इतने थक गए थे सेवाओं में, इतना थक गए कि सो गए। 95 की एक मुरली में बाबा ने कहा, यह भी अलबेलापन है। चाहे तुम करो या ना करो, बाप तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं जरूर। इस नियम को फिर से ठीक करना है। यह प्रभात फिर आई है, फिर से वो शक्तिशाली खजाना देने बाबा आया है और हम सोए हैं, हम लेट उठ रहे हैं, उठकर नींद आ रही है। अमृत वेला नींद किसको किसको आती है? सब लोग सामने देखेंगे, बाकी आजू बाजू नहीं देखना। बहुत जबरदस्त नींद किसको आती है? नींद का महाप्रकोप ढूंढना है, क्यों नींद आती है, क्या कारण है, नींद पूरी नहीं हो रही है, अनिद्रा है, क्या है? एक भाई था हमारे उधर, वो ऐसे नीचे पूरा हो जाता, पूरा जमीन, योग में बैठता था तो नीचे तक झुक जाता था, तो उसको उठाते थे, क्या है? तो वो कहता था, सकाज दे रहा हूं धरती को। धरती को सकाश। संपूर्ण जागरण हो अमृत वेला, जरा भी आंख बंद ना हो, ऐसी शक्तिशाली स्थिति हो अमृत वेला, जरा भी नींद का हल्का भी नशा ना हो, ऐसी जागृत अवस्था, ऐसी जागृत जागती ज्योत की तरह बैठना है और उसमें शक्तियां भरेगी। सारी जीवन की समस्याओं का हल अमृत वेला है। इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, कोई किसी से उत्तर नहीं मिलने वाला, सारे उत्तर अंदर ही है अवचेतन मन में, और वो मिलेंगे अमृत वेला। किसके लिए? सर्वोपरि रखना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जगह अपने दिनचर्या में अमृत वेले को देना है। मम्मा चाहे कितने भी बजे सोते थी, परंतु बराबर उसका उनका उठने का टाइम 2 बजे का था, वो 2 बजे ही उठते थे, चाहे सो कितने भी बजे। अब मम्मा को कहते थे, मम्मा आपको 11:30 बजे, मम्मा कहती थी, एक तो श्रीमत मैंने तोड़ दी, दूसरा थोड़ी तोड़ूंगी, अब लेट सोना। इसलिए इस नियम को फिर से रिवाइज करना है। जी वही से बोलिए। इस विषय पर हमने कई बार कहा हुआ है, शायद आपने सुना भी होगा, अमृत वेला करने के बाद सोना, अर्थात की कमाई चट कर देना। अमृत वेले पावरफुल अमृत वेला करने के बाद समय है ज्ञान चिंतन का, समय है श्रेष्ठ चिंतन का, समय है एकांत का, समय है मौन का, समय है एक्सरसाइज का, समय है वॉकिंग का, समय है स्वयं को तंदुरुस्त रखने का, स्वयं को प्रकृति के सानिध्य में लेके जाने का, गार्डन, झील, झरना, टेरेस, कुछ भी, हवा, शुद्ध हवा, ये सब चीजों का वो समय है, ना कि बेड पर जाकर लेटने का। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, हमको दिन भर में टाइम नहीं मिलता, हमको ऐसा नहीं, हमको वैसा नहीं, टाइम नहीं मिलता तो किसने कहा जल्दी उठने के लिए इतना 2 बजे। जो 2 बजे उठते हैं बहुत अच्छी चीज है, 2 से 4 तक बहुत अच्छा अमृत वेला होता है, परंतु 2 बजे उठने वाले हमने देखा 4 बजे सोने लगते हैं सबके साथ संगठन में। हाँ, यदि दिनचर्या ऐसी है कि जिसमें रेस्ट पर्याप्त मिल रहा है, इस ब्राह्मण जीवन में 2 ही चीजों की सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद और भोजन, इन 2 चीजों को सेट करना होता है, तो अमृत वेला शक्तिशाली हो और अमृत वेले के बाद ज्ञान का चिंतन हो, मुरली का अध्ययन हो। ऐसे कितने हैं जो जाकर सो जाते हैं अमृत वेले के बाद और नींद तो इतनी अच्छी आती है, वाह, आ हा 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 हा, ठंडी ठंडी हवाएं, रजई, अभी तो धूप है और थोड़ी सी बारिश हो रही है, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं, ताज तख्त और तिलक साथ, सौगात मैं लेकर आया हूं। बेड से आवाज आती है, आ जाओ तेज अगर मगर, आ जाओ इधर, सब छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ, ऐसा बिस्तर पुकारता है, तेज अगर मगर आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो बहुत कर लिया ज्ञान योग, अब मेरी ओर आ जाओ। गुनाह की बात नहीं है यहां पर, अपने टाइम को एडजस्ट करने की बात है। सहज यदि आंख खुल जाती है 2 बजे तो बहुत अच्छी बात है। योग, हाँ ठीक है, हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है और अनुभव बहुतों का होगा कि 2 बजे योग बहुत पावरफुल होता है। 2-2.5 बजे उठते हैं तो बहुत पावरफुल योग होता है 4 बजे तक, परंतु उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं। केवल अमृत वेला करना ही इतना श्रीमत नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। बाबा ने कई सारी, कल की ही मुरली में था, सारे दिन भर माया का बखेरा होता है, सुबह उठकर ज्ञान चिंतन करो। एक होता है अमृत वेला, 2 चीजें करनी है, एक तो योग अशरीरीपन और साथ में ज्ञान चिंतन भी, तो वो पीरियड है स्वयं को देखने का, अपनी दिनचर्या को प्लानिंग करने का। बहुत सारी चीजें हैं जो अमृत वेले के बाद करनी है, और यदि हमें सहज नींद नहीं आ रही तो क्यों करें, वॉकिंग पर चले जाओ, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। अपने माइंड को एक्टिव रखना है। एक वो लोग हैं जो अमृत वेला किया और फिर सो गए, ठीक है 5 बजे सो गए, 6 बजे उठे। एक दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने अमृत वेला किया ही नहीं, सीधा 6 बजे उठे। इन दोनों की दिनचर्या में जो अवस्था है उसमें ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। अमृत वेला किया फिर सो गए, अमृत वेला किया ही नहीं और 6 बजे उठे, वो बीच में सो गए, फ्रेश तो लगता है परंतु वहीं से जैसे हम चालू कर रहे हैं। अमृत वेला इतना पावरफुल योग होने के बाद और फिर सीधे जाके सो जाना, शायद वो अमृत वेला पावरफुल नहीं था, वो भ्रम था एक। इसका विस्तार बहुत सारी अन्य अन्य जगह हम की कर चुके हैं, यहां नहीं करेंगे। तो पहली चीज है फिर से अमृत वेला आया है, दूसरा है फिर से इस पॉइंट पर आते हैं, अब अमृत वेले के बाद का समय अर्थात फिर से ज्ञान चिंतन का समय आया है। 4:45 से लेके तो 7 बजे तक का जो पीरियड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4:45 से लेके तो 7 बजे तक, ये जो समय है बहुत पावरफुल समय है, प्लानिंग का, एक्सरसाइज का, वॉकिंग का, ज्ञान चिंतन का। इस पीरियड में बैठकर हमें ये बहुत सारी चीजें करनी है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, कुछ अध्ययन करना है, कुछ क्लास सुनना है। क्लास सुनने के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है, ईयरफोन ले लो, क्लास लगा लो और लॉन्ग वॉक पर चले जाओ 45 मिनट्स, ताकि वो पूरा क्लास पूरा हो जाए। तो एक क्लास सुन लिया, उस एक क्लास में कोई ना कोई ऐसी पॉइंट तो आएगी जो मेरे लिए नहीं है, 45 मिनट्स में एक ऐसी पॉइंट जो टच कर जाएगी और जीवन परिवर्तन कर देगी, और ऐसी एक पॉइंट जिसमें मेरी अपनी एक समस्या का हल मुझे मिल जाएगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगी वो मिल जाएगा उसमें हल। तो सुबह का जो समय है, जैसे ही अमृत वेला पूरा होता है, कई लोग हैं जो स्नान कर अमृत वेला करते हैं, वो बहुत अच्छा, परंतु चलो कई लोग अमृत वेले के बाद स्नान करते हैं, पर हम कहेंगे कि अमृत वेले से पहले ही स्नान करें तो वो बहुत पावरफुल है। एक तो अमृत सेकंड फिर से समय आया है ज्ञान चिंतन का, ये जो बीच का पीरियड है, कोई लोग इसमें नहीं कर सकते तो मुरली के बाद करें, मुरली हो गई 7 से 8 उसके तुरंत बाद। हाँ, उसमें बहुत सारे कार्य कई लोगों को होते हैं, उस कार्यों को करते करते ही, जैसे आपने अमृत वेला पूरा किया, ज्ञान की 10 या 15 मिनट कोई पॉइंट ले लो, और फिर आगे जो 1 घंटा काम करना है, बच्चों को छोड़ना है या कुछ कुछ करना है, वो करते करते उस ज्ञान का चिंतन मन ही मन करते रहना उस टाइम पर। और वॉकिंग बहुत जरूरी है, जो सुबह नहीं कर सकते कम से कम शाम को करें, मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान चिंतन वॉक के समय ज्ञान चिंतन करना है, अगर बाहर जगह नहीं है तो टेरेस पे करना है, अगर वहां नहीं तो कहीं गार्डन अगर आसपास है तो वहां जाना है, परंतु बैठकर मुरली का अध्ययन करना है, जैसे आज सुबह की मुरली है। आज हमने आपको प्रश्न दिए हैं, अब उस प्रश्न के उत्तर कब ढूंढेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, भोजन करते करते, वो टाइम यहां से अपने घर जाते जाते, वो टाइम दोपहर के समय, टाइम को चुराना पड़ेगा, स्टील द टाइम, तो टाइम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो दूसरा है फिर से जो समय आया है, फिर एक बार जो हमारे हाथ में अवसर मिला है, वो है ज्ञान चिंतन करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना। केवल योग से शक्तिशाली नहीं बनेंगे, ज्ञान से, क्योंकि परिस्थितियों के समय योग कहां लगता है, ज्ञान ही काम आता है, ज्ञान की ढाल काम आती है। आज बाबा ने कहा बीमारी होने पर सौंप दो बाबा को, पर एकदम बीमारी आ जाए तो कर नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं है, उस पॉइंट का चिंतन भी नहीं है, करना क्या है उसकी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, कि अचानक बीमारी आ जाए तो क्या करेंगे, अचानक व्यर्थ संकल्प आ जाए, अचानक विकार के संकल्प आने लगे, इन दैट मोमेंट ऑफ इमरजेंसी व्हाट टू डू, थियरी काम नहीं करेगी, चिंतन काम करेगा, पहले से सोचा हुआ थोड़ा चिंतन। तो दूसरा है ज्ञान चिंतन, तीसरा फिर से समय आया है मुरली का। कई लोग सेवा केंद्र पर नहीं आते, घर पे बैठ के मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं, यहां मुरली सुनने आना अर्थात यहां एक ऑरा है, एक वायुमंडल है, इस वायुमंडल में प्रवेश करना, इस वाइब्रेशंस में आना, ये सारे ब्राह्मणों का संग यहां है, वहां बैठकर भगवान के सामने बैठकर मुरली सुनना, उसका अपना एक महत्व है। उस 1 घंटे में हम कम से कम स्थिर तो बैठते हैं, नहीं तो घर पे मुरली पढ़ो 10 मिनट में पूरी हो जाती है, माहौल नहीं बनता, कोई 10 मिनट में पूरा कर देते, ऐसे ऐसे पढ़ लिया, वही तो है, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, तुम्हें घर चलना है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, मौत सामने खड़ा है, अभी घर चलना है, सतयुग में आना है, देवताओं जैसी चलन हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, अपनी चेक करो, याद कितना किया, रात को चार्ट रखो, सारी तो पॉइंट पता है। और फिर करते बाबा वही 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 बताते रहता है मुरली, उसमें कुछ है ही नहीं खास, ये तो सारा ही हमको पता है, हम तो वहीं पे सुन लेंगे, गाड़ी चलाते चलाते मुरली सुन लेते हैं। यहां आना, बैठना, उस वातावरण में हम एंट्री कर रहे हैं, उस वायुमंडल में तपस्या के, और वो सुनते सुनते भी योग का अभ्यास करना, कि मैं स्टूडेंट हूं, टीचर मुझे पढ़ा रहा है, नए नए, जैसे अभी हमने नए लिए बहुत सारे संबंध, ऐसे 108 ये संबंध मधुबन में हम लोगों ने बैठ के मिलके बनाए थे बाबा के साथ के, 108 अलग अलग संबंध। तो यहां बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते ये सोचना कि साजन आया हुआ है, मेरा पति आया हुआ है, वो सुना रहा है, माशुक आया हुआ है, उधर संसार के आशिक माशुक एक दूसरे को खत लिखते हैं तो कितना छुप छुप के बाथरूम में जा जा के पढ़ते हैं, लाइट बंद करके अंदर रखते हैं और उसको पढ़ते हैं, और कितनी बार पढ़ते हैं लव लेटर? कई बार पढ़ते हैं, याद हो जाता है पूरा। हम कितनी बार पढ़ते हैं मुरली? अभी अभी सुना ना, कहा ना इन लोगों ने, किसी ने कि लव लेटर है, मुरली क्लास में आना, नियमित आना, समय पर आना, टीचर के आने से पहले। नहीं, ऐसा ना हो कि टीचर आके बैठा है और बाद में हम आ रहे हैं, और टीचर बैठा है और हम बीच में से निकल जा रहे हैं। अनलेस अनटिल बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चौथा, फिर एक बार अवसर मिला है ब्रह्मा भोजन खाने का, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? इस सभा में ऐसी कितनी माताएं हैं जो खुद रोज भोग लगाती है बाबा को, और बाकी माताएं नहीं? अभी तो सुना ना, बाबा को अपना बच्चा बनाया, तो बच्चे को भूखा? बाबा आपसे कहेगा मम्मी मम्मी मुझे आज भोजन नहीं खिलाओगी? तो चौबीस घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है। जो माताएं नहीं लगाती, आज से चालू करेंगे, ठीक है? पक्का? एकदम पक्का? और भाई कौन कौन भोग लगाते हैं? अरे बाप, भाई भी बहुत है। और कुमार कौन कौन है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं? हाँ, भोजन बनाना, भोग लगाना हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है परमात्मा के प्रति। परमात्मा भाव का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। अव्यक्त महावाक्य है, साकार महावाक्य है बाबा के। बाबा साहूकारों की महफिल में नहीं आते जहां पर 56 प्रकार के भोग है। बाबा गरीबों की महफिल में आते हैं जहां पर सूखी रोटी है, जहां भगवान को दिल से और प्रेम से याद किया जा रहा है वहां वो आता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, ना ही योगी के हृदय में हूं। मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरा भगत, जहां मेरा प्रेमी मुझे अनन्य भाव से पुकारता है, याद करता है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां खड़ा हूं, मैं वहां हूं जहां प्रेम है। फिलोसोफर्स के पास नहीं है वो, तर्क बुद्धि वालों के पास नहीं जाता, जहां प्रेम है उस प्रेम का भोजन वो स्वीकार करता है। तो अत्यंत प्रेम से भगवान को भोग लगा के खाएंगे उसकी याद में, विदाउट कंप्लेंट्स। फिर से ब्रह्मा भोजन मिला है। अगला है, फिर से कर्मयोग का समय मिला है, कर्मयोगी बनने का अवसर मिला है, कर्म करते हुए भी उसकी याद में रहना, बीच बीच में याद में रहना, बीच बीच में अशरीरी बनना, बीच बीच में आत्मिक दृष्टि से सबको देख लेना, एकदम बिजी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात बिजी, बहुत अति चल रही है चीजों की, काम की, सेवा की, उसके समय, अति के समय अंत का अभ्यास करो। अर्थात किसका अभ्यास करो? अंतिम अवस्था का, कि अभी अभी अगर शरीर छूट जाए यही अभी, तो कैसी अवस्था रहेगी? तो कर्म जो कर रहे हैं, चाहे ऑफिस, चाहे ट्रैवलिंग, चाहे घर का काम का, चाहे बच्चों को खिलाना पढ़ाना सब कुछ करना, चाहे घर की सेवा या बाहर का कोई और काम, जो भी काम हो, और जो सेवा केंद्र में रहने वाले हो, जो सेवा केंद्र की सेवा है, वो सब कुछ करते हुए ऐसा ना हो कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसी को भूले हुए हैं। तो कर्म योग का फिर से समय आया है। नेक्स्ट है, एक अवसर फिर आया है, परिस्थिति, विघ्न और समस्याएं, पेपर, ये जब आए तो इनसे सीख लेना, पाठ पढ़ लेना और आगे बढ़ना। परिस्थिति आएगी, विघ्न आएंगे, समस्या आएगी, पेपर आएंगे। किस लिए आ रहा है ये? हमें पाठ पढ़ाने के लिए, क्लास आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट है हाथ में, हमको देने के लिए आ रहे हैं। अगर तुमने ये पेपर पास कर दिया तो ये सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा। और पेपर ऐसा है कि जो हमने सोचा नहीं था, पर अचानक आएगा। अचानक स्वजनों की मृत्यु, अचानक स्वजनों में बीमारी, अचानक किसी से धोखा, अचानक अविश्वास, अचानक अपमान, अचानक किसी के द्वारा निंदा, अचानक जिस पर बहुत विश्वास किया धोखा देकर भाग गया। चाहे विश्वास, चाहे बिजनेस में, चाहे भावना के जगत में, अचानक कुछ न कुछ होगा। जिसको समझा था अपना है, मेरा है, मेरा बेटा, अचानक विरोधी हो गया, अचानक घृणा करने लगा। एक मां थी जिसका बेटा, सत्य घटना है कोरिया की, उस मां को एक ही आंख थी और उस बेटे को अच्छी नहीं लगती थी उसकी मां, क्योंकि जब भी उसकी मां आती थी तो वो उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि तेरी मां अंधी है एक आंख से, तो उसको बहुत अपमानित महसूस होता था। एक बार ऐसी उसकी मां स्कूल में आ गई उसके, तो सब दोस्तों ने उसकी बहुत उड़ाई, तो उसने आकर अपनी मां को बहुत डांटा कि क्यों तुम आ गई यहां पर, और उसने लिखा कि तब से मेरी मां के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न हो गई। मैं नहीं चाहता था कि उससे, मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। मैंने उसको देखा भी एक बार चुपके से बैठ के, वो रो रही थी पर मैंने परवाह नहीं की, रोने दो, रोती है तो। और फिर धीरे धीरे वो लेखक लिखता है, मैं बड़ा हुआ, स्कूल में था, फिर कॉलेज में गया, फिर दूसरी जगह पढ़ने गया, और उसके बाद में फिर जैसे ही मुझे नौकरी मिली मैंने अपनी माँ को देखना बंद कर दिया, गया ही नहीं उसके पास, और फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। और कई सालों तक उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, क्या हो रहा है उसके साथ, इतनी घृणा भर गई उसके प्रति, माँ के प्रति। एक बार फिर उसकी शादी हो जाती है, छोटी सी बच्ची होती है, और अचानक एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है, तो उसकी छोटी बच्ची दरवाजा खोलती है और एकदम डर जाती है वो इस महिला को देखकर जिसकी एक आंख नहीं है और कुरूप सी दिखती है, और भागती है। तो उसके पिताजी आते हैं, वो पहचान लेते हैं ये कौन है, पर उसको ऐसा दिखाते हैं ये कौन है, चल भाग यहां से, पहचानता नहीं वो अपनी माँ को, और अपनी बच्ची को अंदर लेके जाते हैं। फिर दिखाया है कि कॉलेज गेट टुगेदर रहता है, उसको लेटर आता है उसके कॉलेज का, जो बेटा होता है, सारे पुराने दोस्त मित्र मिल रहे हैं, तो वो कॉलेज, उसको लगता है मैं जाऊं वहां, तो वो जाता है अपने गांव में कॉलेज गेट टुगेदर, और फिर उसके मन में संकल्प आता है एक बार माँ को तो देख लूं क्या हुआ। तो उसका घर होता है बहुत पुराना, मिट्टी का, उसमें वो जाता है, और तभी उसको पता चलता है उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ही है, कहता है गई तो गई। तो फिर भी अंदर जाता है तो उसकी माँ की डेड बॉडी होती है, और वहां एक पत्र होता है रखा हुआ, तो उस माँ ने लिखा होता है कि मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, बचपन में जब एक बार खेलते खेलते तुम्हारी आंख चोट लग गई थी तो मैंने अपनी आंख तुमको दी थी, उसकी वजह से मेरी एक आंख नहीं थी। वो लेखक लिखता है कि अब मैं कैसे पश्चाताप करूं। तो जीवन में सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी, अपने पराए होंगे, अडोल रहना है, अचल रहना है, सीखना है और आगे जाना है। सारी परिस्थितियां हमें सिखाने, कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है, इसलिए कमजोर होकर बैठ नहीं जाना है। और ये सब होगा, संसार में भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। संसार में वृद्धाश्रम में वही लोग रहते हैं जिनके बेटे उसी शहर में रहते हैं, वो उसी शहर में वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां उनका घर है। तो इसलिए कहा ना सारे संबंध एक से जोड़ो, जितने देहधारी है और जितने दिखाई दे रहे संबंधी, जो आज कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, सबसे धोखा आएगा, मिलेगा एक दिन, कितना ही बड़ा चाहने वाला कोई कहता हो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा सब मुकर जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स ब्लैक कार्डिज्म, विथ इट्स शिकैनरी, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। मुझे इस संसार से घृणा है, इस संसार से, इस स्वप्न से, इस दुस्वप्न से। यहां पर फॉल्स फेसेस एंड फॉल्स एंड फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट, चेहरे तो बहुत सुंदर है पर दिल खोटे है। सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, मार्केट है, बिजनेस है केवल गिव एंड टेक का, सच्चा प्रेम यहां नहीं है, ऐसा ये संसार। मोह होके उसमें फंस जाना मूर्खता है। एक बाप से आज सुबह की मुरली सुनी ना, वरदान, तपस्या अर्थात एक बाप, दूसरा कोई नहीं, ये तपस्या की परिभाषा दी है बाबा ने, साधना है ये भी। अगला पॉइंट है नुमा श्याम का योग। चलो दिनचर्या में जो भी कुछ हो गया हलचल, शाम का समय है जहां पर फिर से अपने आप को स्थिर करना है। दिनचर्या में बहुत कुछ हो गया, धोखा हुआ, झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, परंतु शाम का समय है फिर से अपने आप को स्थिर करना, नुमा श्याम का योग। अगर ये हम कर ले पक्का, चाहे ऑफिस में है, ट्रैवलिंग में है, अगर घर पे है तो बहुत अच्छा, सेंटर पे तो सेंटर पर बैठकर बाबा से बात करना, सारी दिन में सुबह अमृत वेले से हो लेकर तो 6:30 बजे तक जो कुछ हुआ सब कुछ उसको सुना दो, वो एक चार्ट देना है, हल्का हो जाएंगे उस समय सुना के, सब कुछ ऐसे ही सुना दो, जो भी हुआ ऐसे ही, बस ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सुनाना मात्र ही हल्का कर देगा। रात्रि का चार्ट अलग, ये अलग। कितने पॉइंट हुए? 7, 8 पॉइंट है ज्ञान का अध्ययन या चर्चा। रात्रि का समय है जो हर एक ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान की चर्चा करनी है, उसके लिए ग्रुप की आवश्यकता है, और ग्रुप के लिए दो लोगों की आवश्यकता है, दो लोग चाहिए बस। कुमार है तो अपना एक ग्रुप चालू करे, जो कि रात में बैठे, किसी के कमरे में जाए, बैठे और डिस्कस करे कि आज सुबह बाबा ने क्या कहा, वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, मुरली में क्या कहा, कौन कौन सी पॉइंट थी, साक्षी दृष्टा बना कहा, तन का साक्षी कैसे बने, मन का साक्षी कैसे बने, कुमारियों से क्या बात की, विशेषता कौन सी, जागरण कौन सा, डबल पूजा कौन सी, चर्चा करनी है, नई पॉइंट कौन सी है, सतयुग के बारे में कौन सी बातें कही, मुरली का की चर्चा। और जो लोग घर पे रहते हैं, माता है, यदि पूरा परिवार ज्ञान में है या युगल ज्ञान में है दोनों, तो रात में सोने से पहले बैठकर दोनों मिलकर चर्चा करें। यदि ज्ञान में नहीं है घर वाले तो एकांत में अकेले में बैठ के पढ़े या फोन पर चर्चा करें किसी के साथ। खाली एक ही है कि जिससे चर्चा कर रहे उसी में बंधन ना हो जाए, उसी में मोह ना हो जाए। एक विदेशी बहन ने एक बार हमसे यह प्रश्न पूछा था, हमने कहा था ज्ञान की चर्चा करो, तो उसने पूछा था अगर जिससे ज्ञान की चर्चा कर रहे उसमें ही मोह हो गया तो चर्चा बहुत जरूरी है। कौन कौन करते हैं, कोई बहुत कम। ज्ञान की चर्चा करने से ज्ञान स्पष्ट होता है, ज्ञान की चर्चा करने से दूसरों को हम ज्ञान अच्छे से सुना सकते हैं, ज्ञान की चर्चा करने से हमारा अपना चिंतन बढ़ता है, ज्ञान की चर्चा करने से कॉन्फिडेंस आता है सुनाने का, समझाने का। इसके लिए रोज की मुरली से सुबह सुबह कुछ पॉइंट्स निकाल के रखने हैं। ये पॉइंट्स है जिसकी मुझे चर्चा करनी है। जैसे आज बाबा ने कहा कुमारियों से मुलाकात, कुमारी है राइट हैंड, राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड क्या होता है, फिर लेफ्ट हैंड की क्या परिभाषा है चिंतन करना है, राइट हैंड के गुण क्या क्या होंगे उसकी चर्चा करनी है, चिंतन करना है। राइट कुमारी अर्थात किसी से भी प्रभावित होने वाली नहीं, कुमारी अर्थात किसी में भी आंख डूबने वाली नहीं, कुमारी अर्थात किसी के भी आकर्षण में आने वाली नहीं, कुमारी अर्थात इतनी शक्तिशाली कि कोई विकारी दृष्टि उस पर न डाले। ये तीन चार पॉइंट्स हैं, पर इसको छोड़ नहीं देना है, यहां तक उसको वहां से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और अलग से रखना और फिर सोचना और फिर चर्चा करना आपस में, इसका क्या अर्थ हो सकता है, व्हाट इज द सीक्रेट। तो ज्ञान चर्चा 8th पॉइंट, फिर से ज्ञान चर्चा का समय है। 9th पॉइंट स्वाध्याय, सोने से पहले सेल्फ स्टडी, थोड़ा सा मुरली का स्टडी करना है। साकार मुरली नहीं कह रहे हम, अव्यक्त वाणी। अपनी एक अलग से सीरीज चालू कर दो, 69 से चालू करो, 70s, 80s, कोई भी एक साल ले लो, 85, तो रोज रात में सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक पैर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये आज सुबह की जो मुरली थी उसकी थोड़ी अलग से चर्चा कर ली, मंथन भी किया सुबह, अभी हम कह रहे पढ़ना। रात को सोने से पहले कुछ हम पढ़े, चाहे ज्ञानामृत, चाहे प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, एक्सपीरियंस की किताबें, जगदीश भाई जी की किताबें, या ज्ञान से संबंधित अगर कुछ है वो बातें पढ़ना, स्टडी, उसी के साथ इंक्लूड कर दो राइटिंग, स्टडी में राइटिंग आएगा। और लास्ट में है सोने की विधि, फिर से एक अवसर आया है योगयुक्त होकर सोने का। राइटिंग में आप टॉपिक्स ले लो कोई भी नया टॉपिक, जैसे आपको आज हमने 5 टॉपिक्स दिए, 5 प्रश्न, उसके उत्तर लिखना बैठकर। जैसे आपने अभी अभी ये संबंधों का अनुभव किया, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों ने बहुत सुंदर सुनाया, किसने किसी के पास अकाल पड़ गया था पॉइंट्स का तो कम पॉइंट सुनाए पॉइंट्स बहुत सारे है, एक ही संबंध में आप इतनी बातें बता सकते हो, इतनी बातें। एक पॉइंट ले लो, जैसे एक संबंध हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बाबा मेरा सोल मैकेनिक है, सोल का मैकेनिक, वो मैकेनिक क्या क्या करता है, और इसको कंपेयर करो और लिखना चालू करो। रोज एक टॉपिक पर लिखना है, डेली राइट ऑन 1 टॉपिक, एक टॉपिक ले लो और लिखो, थोड़ा सा लिखना और पॉइंट वाइज लिखो तो ज्यादा आसान होता है। बाबा मेरी नर्स है, परिचारिका, नर्स, वो नर्स क्या क्या करती है, ये नर्स क्या करती है। बाबा मेरी मेड, वो मेड क्या करती है, ये मेड क्या करती है, करता है, करती है, जो भी। थॉट रीडर, बाबा मेरे हर विचार को पढ़ता है, वो क्या क्या करता है। इस तरह से एक पॉइंट लेना मुरली से, टॉपिक निकालना और लिखना रात में। लास्ट पॉइंट बताया सोने की विधि, क्या करते हुए सो रहे हैं, टीवी देखते देखते हैं, मैसेजेस, व्हाट्सएप, रात में फोटो पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ताकि सुबह उठ के देखे कितने आए हैं, क्या कर रहे हैं, गुड नाइट, डिजिटल माया जबरदस्त है, परम कर्तव्य समझ के रखा है कईयों ने, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, गुड नाइट भेजना ही है, थॉट फॉर द डे भेजना ही है, उसका कोई मतलब नहीं है, भेजना चालू है। एक बार हमको मैसेज आया था, हमको यूजुअली जो मैसेज आते हैं रात में हॉस्पिटल से आते हैं इमरजेंसी पेशेंट्स के, एक बार 4 बजे मैसेज आया, हमने सोचा आईसीयू का है, पर देखा तो कोई जोक, और भेजने वाले बाहर वाले ने, इधर वाले इसी परिवार से, पति पत्नी का जोक, सुबह 4 अमृत वाला
हैप्पी सद्गुरुवार, गुड मॉर्निंग, किसी ने भेजा था हैप्पी श्राद्ध, तो भेजने का ही काम है, पढ़ना नहीं। क्लास बहुत ही पावरफुल है, फॉरवर्ड जिसको आई, अच्छा पावरफुल है, उसने और एक जोड़ दिया, डबल पावरफुल फॉरवर्ड, उसने ईमेल कर दिए, उसने इधर भेज दिया, सुन कोई नहीं रहा है, अनाथ क्लास। ये बिजनेस फॉरवर्डिंग का स्टॉप करना। थॉट फॉर द डे, जब तक खुद ने वो पढ़ा नहीं और उसका स्वरूप बना नहीं, तब तक फॉरवर्ड करना ही नहीं, कुछ भी फॉरवर्ड करना नहीं, जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड करने वाले बहुत बैठे, दूसरों का कल्याण करने वालों की कमी नहीं है संसार में, ब्राह्मण संसार में तो बहुत है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्त रात का समय, डिजिटल वर्ल्ड ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है रात का समय, और उसी रात के समय माया भी आ जाती है। एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, एक क्लिक ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी, यात्रा बहुत फास्ट। इसलिए रात को सोने की विधि, सबसे पहले सब डिजिटल स्टॉप ऑफ कर दो उसको आधे घंटे से पहले, यदि रात में कोई इमरजेंसी नहीं है, दूर कर दो उसको, इंटरनेट ऑफ, कोई जरूरत नहीं है। योग में बैठना, कुछ पढ़ना, गुड नाइट करना, समान में स्थित होना, अमृत वेले की तैयारी करते करते फिर सो जाना। एक अव्यक्त वाणी है 95 की, जिसमें बाबा ने कहा है टीचर से मुलाकात, कि यदि तुम्हें सोते समय कुछ बात करनी है तो कमरे के बाहर जाओ, बात करो, और फिर बाहर बात करके अंदर आके फिर सो, वहां बैठ के कुछ बातें नहीं करनी। ठीक है, तो ऐसी है 10 बातें फिर से आई है हमारे पास, जिनको हमें सफल करना है, दिनचर्या को श्रेष्ठ बनाना है।